بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرم میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياء من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तुम मांग करोगे। ये अत्यंत क्षमाशील और दयावान ईश्वर की ओर से तुम्हारे आतिथ्य का साधन है। और उस व्यक्ति से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ईश्वर की ओर बुलाए, अच्छे कर्म करे और ये कहे कि निश्चित रूप से मैं उसके आज्ञाकारी बंदों में से हूँ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूँ अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035-06-5492। श्रोताओ, आज सोमवार है, आज़र महीने की 22, जमादिल अव्वल की 8 और दिसंबर की 13 तारीख। हमारी इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको सुनाएंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। तो श्रोताओं, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सऊदी अरब और इमारात के अधिकारियों से ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह व्यापारिक ट्रांजिट के लिए सर्वोत्तम स्थान है। इसराइली प्रधानमंत्री इमारात पहुंचे हैं, ये यात्रा चर्चा के केंद्र में है। मॉस्को का आरोप है कि यूक्रेन में यूरोप जंग करवाना चाहता है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी ने कहा है कि इमारात और सऊदी अरब के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई और गलतफहमी को किसी हद तक दूर कर दिया गया। जनरल मोहम्मद बाकरी ने सोमवार को ओमान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल मुंजेरी से मुलाकात के अवसर पर यह महत्वपूर्ण बयान दिया है। जनरल बाकरी ने बताया कि सऊदी अरब और इमारात के अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। जनरल बाकरी ने इसी के साथ ईरान ओमान संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि हम आतंकवाद से संघर्ष के तहत ओमान को अपने अनुभव पेश करने के लिए तैयार हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की वायुसेना के कमांडर ने कहा कि ईरान किसी भी देश पर हमले का इरादा नहीं रखता, लेकिन हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल हमीद वाहिदी ने सोमवार को शहीद सत्तारी एयरफोर्स एकेडमी के शिक्षकों और कमांडरों से मुलाकात में कहा कि ईरान की वायुसेना हर स्तर और हर प्रकार के खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस का कहना है कि उसको आशा है कि वियना में जारी वार्ता में अच्छे समझौते की पूरी उम्मीद है। रूस का कहना है कि उसे वियना में जारी वार्ता में अच्छे समझौते की उम्मीद है। रूस के विदेश उपमंत्री ने कहा कि वियना में प्रतिबंधों को समाप्त करने पर आधारित वार्ता के अंतर्गत एक अच्छा समझौता हो सकता है। सर्गेई रियाबकोव ने सोमवार को कहा कि पहले की तुलना में इस समय समझौते की संभावना बहुत अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत सी वजह हैं जिनके कारण वार्ता में प्रगति दिखाई दे रही है। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान की चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार के लिए ट्रांजिट का केंद्र बताया। सुब्रमण्यम जयशंकर स्वामी
एस जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह के विस्तार को लेकर ईरान के साथ सहयोग के संदर्भ में कहा कि क्षेत्रीय व्यापार के लिए ये ट्रांजिट का केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये उन देशों के लिए बहुत ही उचित है जो भारत से संपर्क तो चाहते हैं किंतु वे चारों ओर जमीन से घिरे हुए हैं या लैंडलॉक कहे जाते हैं, उनके पास संपर्क के लिए कोई रास्ता नहीं होता। भारत में एक सवाल का मुद्दा इतना गर्मा गया कि इसे संसद में भी उठाया गया। संसद में सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का मुद्दा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उठाया। सोनिया गांधी ने इस साल अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आए पैसेज को महिला विरोधी बताया और CBSE बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न को वापस लेने और माफीनामे की मांग की। सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। सोनिया गांधी ने कहा कि इस पैसेज में घटिया वक्तव्य हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कोट करना चाहूंगी, महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना कई तरह की सामाजिक और व्यापार और पारिवारिक समस्याओं का मुख्य कारण है। इसके बाद सोनिया गांधी ने दूसरा उदाहरण दिया जिसमें लिखा गया था कि पत्नियां अपने पतियों की बात नहीं सुनती हैं जिसकी वजह से बच्चे और नौकर अनुशासनहीन होते हैं। सोनिया गांधी ने संसद में अपना वक्तव्य पढ़ते हुए कहा कि ये पूरा पैसेज ही निंदनीय विचार को बताता है। इस बीच CBSE ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर पेपर के एक सेट में पूछा गया पैसेज बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। सर्कुलर में आगे कहा गया कि उनकी सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस पैसेज नंबर 1 और उससे जुड़े सवालों को हटाया जा रहा है और इस पैसेज के लिए छात्रों को पूरे अंक दिए जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेत रविवार की रात अबूधाबी पहुंचे जहां संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इमारात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात बेनेत की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इमारात ने सितंबर 2020 में इसराइल से अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए जिसे पूरे इस्लामी जगत में जनता के स्तर पर आलोचना का निशाना बनाया गया। बेनेत का इमारात दौरा गैर कानूनी जायरीन शासन के किसी प्रधानमंत्री का पहला इमारात दौरा है। आर्थिक लक्ष्यों के साथ ही इस दौरे का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य राजनीतिक उद्देश्य बताया गया है कि बेनेत फारस की खाड़ी के अरब देशों के दौरों की परंपरा शुरू करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बेनेत का इमारात का दौरा तब हो रहा है जब पिछले सप्ताह ही इमारात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईरान का दौरा किया था जिसमें ईरान और इमारात के बीच सुरक्षा सहयोग का समझौता हुआ। इस दौरे के बाद इसराइली मीडिया ने ईरान और इमारात के बीच बढ़ती नजदीकी पर गहरी चिंता जताई थी। फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन ने कहा है कि जो देश ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य कर रहे हैं उन्होंने वास्तव में फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात किया है। अल-मयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री नफ्ताली की यूएई यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया में जिहाद इस्लामी ने कहा कि ये खुला हुआ विश्वासघात है। यमन के स्ट्रेटेजिक महत्व वाले इलाके मारिब में यमनी सेना और स्वयंसेवी फोर्सेस की प्रगति के साथ ही तटीय इलाके अलहुदैदा में भी सऊदी अरब को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अलहुदैदा के दक्षिणी इलाकों से इमारात द्वारा समर्थित लड़ाकों के पीछे हट जाने के बाद सऊदी अरब द्वारा समर्थित गुटों ने इन इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अमेरिका की गुप्तचर सेवा और वहां की सेना के अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की है कि दाइश विरोधी अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सीरिया के आम लोग मारे गए। फार्स न्यूज ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट दी कि सीरिया में आतंकवादी गुट दाइश के विरुद्ध कार्यवाही में अमरीकी सेना के एक विशेष दस्ते के हाथों कई बार सीरिया के आम नागरिक मारे गए। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की सोमवार की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा छाया हुआ है और यूरोप और अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सोमवार की बैठक में यूरोपीय संघ की कोशिश होगी कि रूस को कड़े संदेश दिए जाएं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रभारी जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोप ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर मॉस्को पर पाबंदियां लगाने के बारे में विचार कर रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश उपमंत्री कीव की यात्रा पर पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन की सरकार को अमेरिका के भरपूर समर्थन के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने रूस से मांग की है कि वो यूक्रेन की सीमा के पास से अपनी सेना पीछे हटाए और पूर्वी यूक्रेन का मुद्दा कूटनीतिक मार्ग से हल करे। ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम रूस से अधिक स्थिरता वाले संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर रूस ने शत्रुतापूर्ण गतिविधियां जारी रखी तो हम अपने घटकों के साथ मिलकर जवाबी कार्यवाही करेंगे। उधर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यूक्रेन का सैनिकीकरण कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों से भर दिया है और इस देश से अरबों डॉलर के हथियार सौदे कर रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरा सलाम स्वीकार करें। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं नर्सों और शहीद स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों की वरिष्ठ नेता से मुलाकात।
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون।
सैकड़ों शांति समर्थकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और भारतीय प्रधानमंत्री का बनारस दौरा।
हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है।
तो सबसे पहले नर्सों और शहीद स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों की वरिष्ठ नेता से मुलाकात का विषय। रविवार को नर्सों और शहीद स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों के एक गुट ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनाई से मुलाकात की। एक समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने वास्तविकताओं को बयान करने पर बल दिया है। रविवार को नर्सों का एक गुट और शहीद स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों ने तेहरान में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की।
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون। شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، هر جور دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه।
इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनाई ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जन्म दिवस और नर्स डे की बधाई दी और कहा कि मुसीबतों का सामना करने में हजरत ज़ैनब के सब्र व धैर्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता ने कहा कि हजरत ज़ैनब ने कर्बला की घटनाओं व वास्तविकताओं को बयान किया और दुश्मन को वास्तविकताओं पर पर्दा डालने और उस पर हावी होने का अवसर नहीं दिया। इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभ से ईरान में होने वाली घटनाएं इस वास्तविकता की गवाह हैं कि इस्लामी व्यवस्था के दुश्मन ईरानी राष्ट्र और जनता को आघात पहुंचाने के लक्ष्य से जो कुछ कर सकते थे किए और जो नहीं कर सकते थे उसे अंजाम नहीं दिया। ईरान इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में ईरान के यात्री विमान को अमेरिकी युद्धपोत ने मिसाइल से मार गिराया और उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अपने इस अपराध का औचित्य दर्शाने की बड़ी कोशिश की, परंतु उनके दुष्प्रचार की वास्तविकता सामने आ गई। रोचक बात यह है कि अमेरिका खुद को मानवाधिकारों की रक्षा का दावेदार और ठेकेदार समझता है और जब ईरान के यात्री विमान को फारस की खाड़ी में मिसाइल से मार गिरा तो उस पर माफी तक नहीं मांगी, जबकि उस हमले में कई बच्चे और महिलाएं भी मारी गई थीं। यही नहीं, ईरान के यात्री विमान को मार गिराने वाले अमेरिकी सैनिक कमांडर को बाद में पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दूसरे शब्दों में 290 इंसानों के नृशंस हत्यारे को पुरस्कार भी दिया गया। ये अमेरिका का असली चोला है। एक तरफ वो इंसानों की हत्या करता है और दूसरी ओर घड़ियाली आंसू भी बहाता है। 26 मार्च 2015 से सऊदी अरब सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना यमन पर हमला आरंभ किए हुए। उसके इस पाशविक हमले में 10,000 यमनी मारे जा चुके हैं। मारे जाने वालों में ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की है। अमेरिका न केवल सऊदी अरब के अपराधों की कभी भर्त्सना तक नहीं करता, बल्कि आधुनिकतम हथियारों से सऊदी अरब को लैस भी करता है और उन्हीं हथियारों से, दूसरे शब्दों में मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश के हथियारों से सऊदी अरब यमन की निर्दोष जनता व लोगों की हत्या करता है। बहरहाल वास्तविकताओं को बयान करना बहुत जरूरी है, वरना दुश्मन अपने दुष्प्रचार से वास्तविकताओं को बदल देगा और उसके इस षड्यंत्र को विफल व निष्क्रिय बनाने का बेहतरीन तरीका वास्तविकताओं को बयान करना है।
और अब चलते हैं लंदन। विकी लीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हुए सैकड़ों शांति समर्थकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जूलियन असांजे की रिहाई की मांग की है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट, साथी कायम रिजवी की जबानी।
सैकड़ों शांति समर्थकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हुए उनको जेल से स्वतंत्र किए जाने की मांग की है। आज मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कितने शर्म की बात है कि ब्रिटेन में आज असांजे को अमेरिका को न सौंपने की मांग को रद्द कर दिया गया। असांजे इसलिए जेल में है क्योंकि एक पत्रकार के रूप में उन्होंने CIA के अत्याचारों और यातनाओं को सार्वजनिक किया। अब वे उनको मार डालना चाहते हैं। ऐसे में डेमोक्रेसी क्या हुई? विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने अमेरिका और उसके घटकों के हाथों इराक तथा अफगानिस्तान में किए गए अत्याचारों और यातनाओं के संबंध में 11 साल पहले 2.5 लाख गोपनीय प्रमाणों को सार्वजनिक कर दिया था। शायद यही उनका जुर्म है। अमरीकियों ने अपने सैनिकों और अधिकारियों की पोल खुलने के फौरन बाद से ही असांजे को गिरफ्तार करने का प्रयास बहुत तेजी से आरंभ कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया मूल के असांजे ने बचने के लिए लंदन में स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी ताकि कूटनीतिक स्थलों को मिली सुरक्षा की वजह से वे सुरक्षित रह सकें। ब्रिटेन की पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए 7 वर्षों तक असांजे इक्वाडोर के दूतावास में एक छोटे से कमरे में एक तरह से बंदी के रूप में रहे। इसी बीच इक्वाडोर की नई सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ एक गोपनीय समझौता करके 2 साल पहले असांजे को ब्रिटेन की पुलिस के हवाले कर दिया था। वर्तमान समय में वह ब्रिटेन के बिलमार्श जेल में है। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि असांजे लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना का शिकार है और इस समय उनके साथ अमानवीय एवं अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हमको पहले से ही पता था कि आतंकवाद से संघर्ष के बहाने जो लड़ाई शुरू की गई है वो नागरिक स्वतंत्रता के हनन का कारण बनेगी। ब्रिटेन की सरकार 2 वर्षों से बिलमार जेल में बंद जूलियन असांजे को अमेरिका के हवाले करना चाहती है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इराक और अफगानिस्तान में खुलकर अत्याचार करने वाले बुश और ब्लेयर पूरी तरह से आजाद हैं, जबकि उनके अत्याचारों और अपराधों को आम करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अगर असांजे को अमेरिका के हवाले कर दिया गया तो फिर अमेरिका और उसके घटकों के अत्याचारों को सामने लाने के आरोप में उनको अमेरिका में 175 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने इशारों में यूपी के साथ पंजाब की जनता को भी कई संदेश दिए। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पंजाब को कनेक्ट करने के लिए राजा रणजीत सिंह का उल्लेख किया। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के नगर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का पूरा ध्यान यहाँ की परियोजनाओं को पूरा करने पर केंद्रित है, जिनमें धार्मिक परियोजनाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए धार्मिक आस्था और विकास के कामों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कहा कि आज भारत केवल अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं बना रहा है, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है और इसी प्रकार काशी में केवल भव्य कॉरिडोर ही नहीं गरीबों के पक्के मकान भी बनाए जा रहे हैं।
हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है।
उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को ढूंढ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह धार्मिक रंग में दिखाई दिए। टीकाकारों का कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा को इससे लाभ मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा, जहां से वे सांसद भी चुने गए हैं, पूर्वांचल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम जल संकट, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अरब देशों के अधिकारियों के तेहरान दौरे की। हालिया कुछ दिनों के भीतर ये देखने में आया कि अरब देशों के नेताओं ने ईरान के दौरे किए। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद का तेहरान दौरा भी महत्वपूर्ण रहा। दोनों देश एक दूसरे के बहुत करीबी घटक हैं। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। फैसल मकदाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने जैसा कि साफ शब्दों में ऐलान किया है, इस देश का परमाणु कार्यक्रम नागरिक लक्ष्यों तक सीमित है।
البرنامج النووي الايراني برنامج سلمي ويجب ان يعرف الاخرون ان ما يشاع غير ذلك ليس بامر واقعي।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान की परमाणु नीति के बारे में कहा कि ईरान घोषित फ्रेमवर्क के अंदर वार्ता कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी गंभीरता और अच्छी नीयत के साथ वार्ता की मेज पर बैठे हैं। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान का कहना था कि वार्ता के दौरान हमारा कोई प्लान बी नहीं है, हम इंतजार करेंगे कि वार्ता का उस तरह से नतीजा सामने आए जिसकी ईरान की जनता को प्रतीक्षा और जिसकी इच्छा है।
همزمان با میز مذاکره به دنبال پلن تو نخواهیم بود، منتظر میمانیم، تلاش میکنیم.
विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम सीमित समझौते को अच्छा नहीं समझते, समझौता व्यापक और समग्र होना चाहिए जिसके नतीजे में पाबंदियों के हटने का असर ईरान की जनता महसूस कर सके।
بتوانیم در راستای لغو تحریم ها پیشرفت هایی که مورد انتظار ملت هست حاصل بشه.
वहीं सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने ईरान और सीरिया के आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि सीरिया के सारे क्षेत्र ईरानी निवेश के लिए खुले हुए हैं।
الهدف الاساسي لهذه الزياره هو تعميق العلاقات الاقتصاديه بين الجمهوريه العربيه السوريه والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه।
सीरिया के विदेश मंत्री से पहले संयुक्त अरब इमारात यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद ने भी तेहरान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी से मुलाकात की। शेख तहनून की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से भी हुई। इस सफर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लगभग दो सप्ताह पहले ईरान के विदेश उपमंत्री अली बाकरी कनी ने भी ईरान का दौरा किया था। यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तेहरान दौरे के बारे में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार शहबाज अली अब्बासी का कहना है कि ये दौरा एक अच्छा संकेत है और इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे।
देखिए, इब्तिदा में ही पहली बात यह है कि हम इसको एक नेक फॉल तसव्वुर करते हैं। ये एक अच्छा इकदाम है कि यूएई की जो है स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून, जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जो है वो ईरान का दौरा किया है। ठीक है, अब मैं इसको दो एंगल से जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वाजिब हो जाएगी और बहुत सारी चीजें जो है उनकी भी वजाहत हो जाएगी। पहली बात ये कि हम इसको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, यानी कि सफारती महाज। दुनिया के अंदर दो तरह की जो है वो हमेशा सियासत जो है वो की जाती है। अगर आप ये कहें कि वॉर स्ट्रेटजीज जो है उनको अपना लिया जाए या जो काउंटरिज्म है उसको अपना लिया जाए, इसी को अगर ले लिया जाए, तो दुनिया के अंदर ऐसी सियासत किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि आज जो आपका अपोनेंट पावरफुल है, हो सकता है आने वाले कल में वही आपका अपोनेंट जो है वो हफ्ता हफ्ता क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। ठीक, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। क्योंकि ये दौरा, इस वक्त अगर हम इसको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने शुरू कर दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एन उस वक्त ये दौरा है। कहते हैं कि चंद हफ्ते पहले जो है ईरान में आप क्या नाम है इनका, वो जो न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आया था पूरा एक डेलीजन, वो विजिट करके वापस गया। ईरान के जोहरी जो मुआहदात स्पेशली अमेरिका की तरफ से, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप सब जो है वो निकल गए थे, उस एतबार से दोबारा जो बाइडन पॉलिसी है वो भी सामने आई। एन उसके बाद जो है दुबई की तरफ से स्पेशली अब यूएई की तरफ से कहें कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं वो अगर ईरान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खित्ते के अंदर सिफारती या डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज हो रही हैं।
डॉक्टर नजात अल सईद امارات میں امریکن یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یو اے ای نے ایران کے ساتھ اپنے کوٹ نیتک رشتوں کو سیمت استر پر ہی صحیح مگر جاری رکھا, اور حالیہ دنوں میں امارات کوٹنیتی کے میدان میں کافی سکریہ رہا ہے.
Well, first of all, let us talk about the UAE in this stage, particularly and at this time is empowering its soft power, mainly its diplomacy, and reducing dealing with the hard power. We saw all of its diplomatic movements towards Syria with the visit of Sheikh Abdullah bin Zayed to Syria, and lately now with Turkey with the visit of Sheikh Mohammed bin Zayed to Turkey. So in fact, diplomatic movements of UAE have been shown very apparently lately, and it has been quite fruitful, honestly. So what is happening now with Iran is not that's surprising based on what is happening with the other countries. So what we see, like if we even compare during the tension times, during even like a couple of years ago, despite among tensions with Iran, the UAE has maintained a limited degree of engagement with Iran. It hasn't been cut completely like other Arab Gulf countries. And also the trade relations haven't been cut all of these years. For example, in 2015, Iran had $200 billion in investment in the UAE. In 2017, the UAE was Iran's main import partner with trade between the two countries, reaching to $12.9 billion. So what is happening currently is not, if you compare what happened to the past, and especially now with all these diplomatic movements and with the empowerment of the whole soft power now, you don't see it that surprising. That's how I read it.
پاکستان کے ورشٹھ ٹیکہ کار شہباز علی عباسی کا ماننا ہے کہ ایران اور یو اے ای کا کھیتر میں بڑا مہتوپورن استھان ہے, اور کھیتریے شانتی کے سندرب میں ان دیشوں کی بڑی پربھاوی بھومیکا ہو سکتی ہے,
اور دونوں کی اپنی اپنی ایک جو ہے علاقائی اہمیت ہے, ان کا علاقائی اثر رسوخ ہے, اور بالخصوص دونوں ممالک جو ہے وہ خطے کے امن کے اعتبار سے بہت مؤثر اور قابل عمل جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں.
عرب جگت کے وکھیات ٹیکہ کار عبدالباری اتوان کھیتر میں جاری کوٹنیتک گتویدھیوں کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک لیکھ میں لکھا کہ امارات کے این ایس اے تہنون بن زائد سندھی اور سمجھوتے کے ماسٹر مائنڈ کہے جاتے ہیں. امارات اب ایران کے سلسلے میں اپنی نیتی میں بدلاؤ لانے کے موڈ میں ہے. اس سے پہلے تک امارات نے اپنے گھٹک دیشوں کے ساتھ مل کر ایران پر لگے پرتبندھوں کو ادھک گھاتک بنانے کی کوشش کی, مگر یہ کوششیں ناکام رہیں. تو اب ایران سے مدبھید ختم کر کے سہیوگ کا راستہ کھوجنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. امارات نے تو اب مسلم برادرہڈ سنگٹھن اور ترکی سے بھی اپنے مدبھیدوں کو سلجھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. امارات کے کراؤن پرنس محمد بن زائد نے ترکی کی یاترا میں وہاں $10 ارب کے نویش کی بات کی. یہ ترکی کی اکانومی کو سہارا دینے کا اشارہ ہے. امارات کی نیتیوں میں آنے والے اس بڑے بدلاؤ کے دو مکھیہ کارن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم برادرہڈ کی طاقت پورے علاقے میں گھٹی ہے, دوسرے یہ کہ علاقے سے امریکہ دھیرے دھیرے اپنا بوریا بستر سمیٹ رہا ہے. اب امریکہ کا دھیان روس اور چین پر کیندرت ہے. ایران کا جہاں تک سوال ہے تو وہ اپنا اسٹینڈ پوری طرح صاف طور پر بیان کر چکا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے اسٹینڈ پر ڈٹا ہوا ہے. ایران کے مکھیہ پرمانو وارتا کار علی باقری کنی نے کہا کہ پرمانو سمجھوتے میں سب سے بڑی سمسیا اسے لاگو کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سندرب میں ہونے والی کوتاہیاں ہیں. امریکہ جب اس سمجھوتے میں موجود تھا اور اس سے باہر نہیں نکلا تھا, تب بھی وہ سمجھوتے کا پالن نہیں کر رہا تھا, جبکہ یورپ کا رویہ بھی ایسا تھا کہ وہ یقین نہیں دلا سکے کہ وہ پرمانو سمجھوتے پر عمل کر رہے ہیں.
اجرای برجام در طول چند سال گذشته در واقع دقیق و کامل نبوده. حتی آمریکایی‌ها زمانی که در برجام هم بودند و از برجام خارج نشده بودند, برجام رو به درستی اجرا نکردند.
۔ عرب ٹیکاکار اتوان کا ماننا ہے کہ ان بڑے پریورتنوں کی وجہ دو شکستیں ہیں. ایک شکست وہ ہے جو افغانستان میں امریکہ کو جھیلنی پڑی اور دوسری ہار وہ ہے جو اسرائیل کو غزہ یدھ میں جھیلنی پڑی. جبکہ اس بیچ ایران کی طاقت بہت تیزی سے بڑھی ہے اور وہ بڑی کھیتریہ شکتی بن گیا ہے. فارس کھاڑی میں عرب دیشوں کو یقین ہو چکا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اور نہ ہی اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کی رکشا کر سکے. اسی لیے اسرائیل سے سمجھوتوں کی پرکریا ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور ایران کے ساتھ عرب دیشوں کے نزدیکی بڑھ رہی ہے. میئر جاویدان فر اسرائیل کی ریچمینڈ یونیورسٹی کے لیکچرر ہیں. ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ تازہ پریورتنوں کو دیکھ کر اسرائیل میں نراشا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اور امارات قریب آتے ہیں تو اسے یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ دوستی کا نیا چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے.
And now with the Iranians they're also talking. I don't share Dr. Bagheri's optimism that this is a sort of a new beautiful chapter. No, not really. The two countries do business absolutely. But of course the UAE is concerned about the sanctions imposed against Iran. But again, by talking to the Iranians while having relations with Israel, I think UAE is showing the way in this region on how to really leverage your diplomatic power.
یعنی میئر کو یہی امید ہے کہ کسی طرح ایران سے عرب دیشوں کے رشتے خراب ہوں تاکہ اسرائیل کو موقع مل جائے اور وہ عرب دیشوں کو ایران سے دور رکھے. بہرحال اسرائیل کیا چاہتا ہے اور امریکہ کی کیا مرضی ہے یہ تو ایک الگ وشے ہے. مہتوپورن یہ ہے کہ کھیتر کے دیشوں کو اس حقیقت کا احساس ہونا ضروری ہے کہ وہ باہری طاقتوں کی مدد لے کر کھیتر میں شانتی استھاپت نہیں کر سکتے بلکہ آپسی سہیوگ کے ذریعے ہی اس لکشیہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو یہ اس علاقے میں بڑی طاقتوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے. اسرائیل کی استھاپنا ہی سنکٹ پھیلانے اور وستاروادی نیتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کی گئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کھیتر کے دیش اسرائیل کے روپ میں موجود بھیانک سازش کو نپٹارا کرنے کے لیے دھیان میں رکھیں اور فلسطین مدعا بھی حل ہو جائے. شروتا کارکرم وشو درپن یہیں پر سماپت ہوتا ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم.
جل سنکٹ. دوستو کارکرم جل سنکٹ میں آپ کا سواگت ہے. مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستو پچھلے کارکرم میں ہم نے بتایا تھا کہ ایران کے نو باغ یونیسکو کی انٹرنیشنل ہیریٹیج کی سوچی میں شامل ہیں. یہ باغ ہیں پاسارگاد، ایرام، چہل ستون، فین، عباس آباد، شازدے، دولت آباد، پہلوان پور اور اکبریا باغ. ان باغوں میں ہریالی اور کھلی ہوئی جگہوں میں پانی کی سپلائی کے دو الگ الگ سسٹم ہوتے تھے جو اپنے آپ میں بے نظیر تھے. ایرانی واستوکاروں نے پانی کے مہتو کے بھرپور بوجھ اور انسان سے اس کے گہرے سمبندھ پر گہری توجہ کے ساتھ پانی کو عمارتوں کے بھیتری بھاگ تک پہنچاتے تھے۔ الگ الگ گہرائی والے حوض کا نرمان اور پھر پانی کو کہیں جھرنے تو کہیں فوارے کے روپ میں پردرشت کرنا اور اسے نالیوں اور چھوٹی نہروں کے مادھیم سے پرواہت کرنا، وہ انتظام تھے جو پانی کے آدھیاتمک پہلوؤں کو سامنے لانے اور اس کی سندرتا کو نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ البتہ یہ سب کچھ پانی کے کفایتی استعمال کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس بات کو ہمیشہ پراتھمکتا میں رکھا جاتا تھا کہ پانی ہرگز برباد نہیں ہونا چاہیے۔
باغوں کو سجانے اور ویوستھت کرنے کی پرکریا کی شروعات ہکامنشی کال سے ہوئی۔ 6 شتابدی عیسیٰ پورو بادشاہوں کے نجی باغوں اور محل کے آس پاس کے باغوں کے نرمان کے لیے بہت سٹیک ڈیزائن موجود تھا۔ بعد میں ساسانی شاسن کال میں یہ ڈیزائن نمونہ بن گیا اور اسلام کے بعد اس میں اور بھی نکھار آیا۔ پاسرگاد باغ ان باغوں کا پہلا نمونہ ہے۔ ان باغوں کی سینچائی کے لیے پتھر کی نالیوں کا ایک جال تیار کر دیا جاتا تھا جسے آبنما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آبنما باغ کی سینچائی کے ساتھ ہی باغ کی سجاوٹ کے کام بھی آتا تھا۔ باغ کے دو طرف دو محل بنائے جاتے تھے جنہیں وشرام کرنے اور باغ کے دل فریب نظاروں کا آنند اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سارے محل باغ کے بھیتر ہوا کرتے تھے، یعنی ہر محل کے آس پاس ہرا بھرا اور بہت شانت واتاورن ہوتا تھا۔ شاہی باغوں کا پانی پلوار ندی سے نکلنے والی جل شاخاؤں سے آتا تھا۔ آبنما دو باغوں پر آدھارت ہوتا تھا، ایک باغ میں حوض ہوتے تھے اور دوسرے باغ میں پانی کی نالیاں۔
ہر 9.5 یا 13.5 میٹر لمبی نالی کے بعد ایک چھوٹا حوض بنایا جاتا تھا۔ حوض کا کام پانی کو چھوٹی نالیوں میں بانٹنے اور اس کے تیز پرواہ کو شانت کرنے کا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پانی میں اگر کیچڑ یا کوئی اور گندگی ہے تو وہ بھی اسی حوض میں نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ حوض 87x87 سینٹی میٹر کے ہوتے تھے اور ان کی گہرائی 52 سینٹی میٹر ہوتی تھی۔ پتھریلی نالیوں کی گہرائی لگ بھگ 25 سینٹی میٹر اور نالیوں اور حوض کے کناریوں کی چوڑائی لگ بھگ 16 سینٹی میٹر ہوتی تھی۔ پاسارگاد باغ کے آب نما کا لگ بھگ 1100 میٹر بھاگ کھوجا جا چکا ہے اور مٹی کی کھدائی کر کے اسے باہر نکالا جا چکا ہے۔
چہل ستون باغ اسوان شہر کے بیچ میں استھت ہے۔ اس باغ کے بیچ میں ایک بڑا سندر محل بنا ہوا ہے جس میں کی گئی چترکاری اور سجاوٹ وشو خیاتی رکھتی ہے۔ صفوی کال کے واستوکاروں نے چہل ستون باغ میں پانی کے پربھاؤ کو دو شیلیوں میں پردرشت کیا ہے۔ عمارت کے پوروی اور پشچمی بھاگ میں بنے بڑے حوضوں کے اندر ٹھہرا ہوا پانی اور ہال کا سنگ مرمر کا حوض اور دکشنی سرے پر بنا ہوا حوض۔ عمارت کے آس پاس پرواہت جل کے لیے بنی نالیوں کی چوڑائی الگ الگ ہے۔ راستے میں جگہ جگہ فوارے بنائے گئے ہیں اور پانی کو پمپ کرنے اور اسے کئی بھاگوں میں بانٹنے کے لیے بڑے سٹک سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ پانی کو بہترین روپ میں پریوگ کرنے اور پانی سے واتاورن کو سجانے کے لیے استعمال کی گئی خاص شیلیاں ہیں۔ پانی کے وترن کے ڈھانچے کے لیے بہت توجہ سے کیا گیا کام یہ درشاتا ہے کہ اسے شیخ بہائی کی جل وترن شیلی کی طرز پر بنایا گیا ہے۔
زائند رود ایران کے بھیتر میٹھے پانی کی وہ ندی ہے جس سے ہمیشہ پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا ہے۔ اسفان اور آس پاس کے سوکھے علاقوں کو اچت ڈھنگ سے پانی پہنچانے کے لیے ندی کے پانی کے وترن کا بہت ویوستھت انتظام کیا گیا تھا۔ جل وترن کا آخری پرانا سسٹم تمہارے شیخ بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسفان میں صفوی کال کے باغوں میں پانی نالیوں اور راستوں سے پرواہت ہوتا تھا۔ ادھکتر باغوں میں شطرنج روپی نالیوں کا جال بچھا دیا جاتا تھا۔ یہ باغ عام طور پر 4 باغوں میں بٹے ہوتے تھے اور بیچ میں ایک عمارت ہوتی تھی جس کے سامنے بہت خاص قسم کا واتاورن پیدا کر دیا جاتا تھا۔ صفوی باغوں کا ڈھانچہ اس کے بھیتر بہنے والی نہروں، نالیوں और वहां नजर आने वाली फुलवारियों और पेड़ों की मदद से जीवन और काम के लिए बेहद उत्कृष्ट माहौल पैदा कर देते थे।
सफेदी काल से बचे हुए बागों में पानी का करिश्मा बहुत साफ नजर आता है, जैसे हस्त बहेश इमारत में पानी के इस्तेमाल से पैदा की गई सुंदरता बिल्कुल निराली नजर आती है। इमारत के उत्तरी हॉल में चौकोर हौज है जिसका पानी फव्वारे के जरिए आता है और जब हौज भर जाता है तो ढलवा पत्थरों से झरने के रूप में नीचे गिरता है। आठ कोणों वाली बड़ी इमारत के बीच में आठ कोनों वाला एक हाउस है। जर्मन सैलानी और चिकित्सक एंजलबर्ट कैम्फर 17वीं शताब्दी ईस्वी में हस्त बहेश्त महल का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि पानी गिरने की मनमोहक आवाज जो संगे मरमर के भीतर से गिरने वाली पानी की वजह से पैदा होती है हर देखने वाले को खास शांति प्रदान करती है।
पानी की सप्लाई का आधुनिक और दिलचस्प सिस्टम किसी बाग में देखना हो तो आप काशान का फीन बाग देखिए। फीन बाग की डिजाइन में पानी का इस्तेमाल बुनियादी हैसियत रखता है। फीन बाग में पानी ठहरा हुआ भी है जो महल के सामने वाले हाउस और सफी हाउस खाने में है। इस बाग में पानी प्रवाहित भी है और आपको नालियों और फवारों में नजर आएगा। इसके अलावा नीचे से उबलता हुआ पानी है जो हाउस की तह में बने छिद्रों से बाहर आता है। पानी की अधिक मात्रा और फिरोजी कलर की टाइलों से सजी नालियों में पानी का बहाव वो भी इस इलाके में जहां पानी दुर्लभ माना जाता है। इसके साथ ही बाग के घने और हरे भरे पेड़ वास्तव में एक दिलचस्प विरोधाभास को दिखाते हैं, क्योंकि बाग की दीवारों के बाहर नजर डालिए तो ये मरुस्थलीय इलाका है और यहाँ की प्रकृति बड़ी बेरहम है।
नालियों, बड़े हौज और छोटे हौजों में प्रवाहित पानी सुलेमानिया जलसोते से हासिल होता है। जलसोते का पानी पहले बाग के पीछे एक बड़े हौज में जमा होता है। नालियों और इस हौज की सतह की ऊंचाई का अंतर ज्यादा है जिसकी वजह से फव्वारे बनाना संभव हो सका है और पानी नीचे से ऊपर की ओर तेजी से उछलता है जिससे फव्वारा बन जाता है। सारी नालियों के नीचे और हौज के चारों ओर एक मीटर की गहराई में तंबूशे नाम के पाइप बिछाए गए हैं। ये पाइप मिट्टी से बने हैं जो एक तरफ बड़े हौज से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ नाली के आखिरी हिस्से में इसका मुंह बंद कर दिया गया है। पानी एक तरफ से अंदर आता है लेकिन चूंकि दूसरा सिर बंद है इसलिए पाइप का पानी फव्वारों से उछलता है। जमीन की सतह ढलवा है इसलिए पानी के दबाव को बांटने के लिए पाइप की चौड़ाई अलग अलग रखी गई है। पाइप का शुरुआती भाग उसके आखिरी छोर से अधिक मोटा है। इसी तरह पानी का दबाव बढ़ जाता है और पानी समान मात्रा में फव्वारे से बाहर निकलता है। बड़े हाउस का पानी उसके भीतर 12 जलस्रोतों से उबलता है। इसे उबलता हाउस कहा जाता है।
इस सिस्टम के डिजाइनर इनार में 14वीं शताब्दी ईस्वी के विख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री गयासुद्दीन जमशीद काशानी थे, जिन्होंने पास्कल से 200 साल पहले सतह के अंदर के नियम का पता लगा लिया था और जमीन की प्राकृतिक ढलान का प्रयोग करके बहुत से बड़े काम किए थे।
इरम बाग शिरा शहर के बीच में स्थित विशाल आयताकार है। बाग में जमीन की ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। ढलान तेज होने की वजह से वास्तुकारों ने खास तरकीब निकाली कि बाग के मुख्य रास्तों और उनसे निकलने वाले सबवे में कई जगहों पर जीने बना दिए। ऊंची नीची जमीन से बाग की खूबसूरती को चार चांद लग गया और बिल्कुल अलग रूप से निखर कर सामने आ गया।
बाग के बीच में मुख्य रास्ता और असली सड़क है जो पश्चिम से पूरब की ओर गई है। ये रास्ता इमारत और बड़े हाउस के सामने से शुरू हुआ है और बाग के आखिरी हिस्से तक गया है। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे सुंदर पेड़ लगे हैं और ठीक बीच में पानी की नाली है जिसमें पानी बहता है। नाली हाउस से शुरू हुई है और बाग के बीच में पहुंचने के बाद अलग छोटी नालियों में बंट गई है ताकि पानी बाग के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाए। जिस जगह पानी विभाजित होता है वहां कुछ जीने बनाए गए हैं। इराम बाग का ये रास्ता इस जगह जीनों से आगे बाग के आखिरी हिस्से तक सीधा चला जाता है। इस पर कंकरियां डाल दी गई हैं।
बाग में खास अंदाज की ताजगी दिखाई देती है जो हौज और नालियों में दौड़ने वाले पानी से पैदा होती है। पानी हौज से नाली में जाता है जो लोहे की सीढ़ियों के नीचे बनी हुई है। ये पानी आगे बढ़ते हुए बड़े हौज के आसपास की नालियों में पहुंच जाता है और फिर वहां से असली सड़क के बीच में बनी नाली में और उससे छोटी छोटी नालियों में बहता है और वृक्षों और वनस्पतियों की सिंचाई करता है।
पानी की चौड़ी नाली बाग से होते हुए बड़े हौज खाने की इमारत में पहुंचती है और वहां पानी हौज का चक्कर लगाने के बाद हौज के आसपास की नालियों में प्रवाहित होता है और बाग की छोटी बड़ी नालियों से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस पानी का अधिकतर भाग शिराज के अन्य बागों की तरह बड़ी नहर से आता है जो जल वितरण के पुराने सिस्टम के आधार पर कई भागों में बांट दी गई है। इसके अलावा बाग के भीतर दो गहरे कुएं खोदे गए हैं ताकि पंपिंग सेट की मदद से जरूरत का पानी प्राप्त किया जाए और पाइपों के जरिए उससे बाग की सिंचाई का काम अंजाम दिया जाए। पीने के लिए और इमारत के भीतर दूसरे इस्तेमाल के लिए शहर में होने वाली पानी की सप्लाई का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओ, कार्यक्रम जल संकट के साथ ही हमारी ये सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्ट फिल्म में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035065492। तो इसी के साथ अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और अन्य साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.